السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان والقرآن، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت شکر احسان ہے، اور ہم اگر شکر ادا کرتے جائیں تو بھی وہ شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہماری ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا رہنمائی کے لیے، اور پھر ہمیں ایک ایسی عظیم کتاب دی جو رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، اور وہاں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. تو رمضان، دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ ہے ہی اہم، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. سلف ہمارے جو سلف تھے، علماء ہمارے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب رمضان آتا تو وہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے تھے، یا ان کے عمل میں کیا تبدیلی آتی تھی، یا وہ کس چیز پر زیادہ فوکس کرتے تھے؟ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کو قرآن سے بہت زیادہ شغف، بہت محبت تھی، اور بہت دلچسپی سے وہ اس کو پڑھتے تھے اور یاد کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جو کہ بالکل ینگ سے صحابی تھے، 20-21 سال کے نوجوان، تو ان کے فادر رسول اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ عبداللہ کو تھوڑا سا سمجھائیے کہ وہ دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے. تو رسول اکرم نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا عبداللہ تم ایسا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو کہا کہ ایسا نہ کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیادہ قرآن اور زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ان کو کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا کم کر دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ اور یہ تمہاری عمر ہو جائے تو تم اتنا نہ کر سکو گے، تھک جاؤ گے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ صحابہ ایسے تھے کہ ان کو روکنا پڑ رہا تھا کہ اتنا زیادہ بھی نہ پڑھو، کیونکہ وہ ایک رات میں پورا قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے، یا ایک دن اور رات میں. تو رسول اکرم نے کہا کہ 3 دن سے کم میں اس کو کمپلیٹ نہ کرو، اور پھر وہ 3 دن میں اس کو کمپلیٹ کیا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو طرز عمل تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ 3 دن میں ایک قرآن کمپلیٹ کر لیں، اسپیشلی رمضان میں. اور واقعی میں انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ دیکھیں، اگر ہم بھی کوشش کریں تو ہم ایک دن میں 10 پارے پڑھ سکتے ہیں آرام سے. ہر نماز کے ساتھ اگر آپ 2 پارے پڑھ لیں تو 5 نمازوں کے ساتھ پورے 10 پارے ہو جائیں گے، الحمدللہ. تو رمضان اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور رمضان کا مہینہ اہم ہے ہی اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور صحابہ کرام دراصل اتنا زیادہ وہ قرآن پر فوکس کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کر تابعین اور تبع تابعین بھی. امام مالک معتا پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو صرف قرآن کو لے کر بیٹھ جاتے، باقی سب بند کر دیتے تھے. ان کی ساری کلاسز بند ہو جاتی تھیں، صرف اور صرف تلاوت قرآن پر وہ فوکس کرتے تھے، کیونکہ الحمدللہ ان کو قرآن کے معنی معلوم تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی ہمارے علماء تھے، تو یہ مہینہ ان کے لیے خاص تھا قرآن کے لیے، اور وہ اس مہینے کو قرآن پڑھنے کے لیے خاص کر لیتے تھے جب رمضان آتا تھا. ابن شہاب زہری رحمہ اللہ علیہ، کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو وہ بھی اپنے آپ کو رسول اکرم کے جیسا سخاوت میں بہت آگے بڑھا لیتے تھے، اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، اور صرف قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ رسول اکرم نے بھی کیا کیا تھا، آپ سخاوت میں تیز ہواؤں کی مانند تھے. تو بعض ہمارے تابعین، تبع تابعین، وہ بھی اپنے آپ کو سخاوت میں اسی طرح آگے کر لیتے تھے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اور دوسرا قرآن پڑھتے رہنا. تو یہ مہینہ قرآن کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے. رمضان کو کہا ہی گیا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المبارکہ کہا گیا اس کو، اس میں بھی قرآن پڑھنے کا ہی ذکر کیا گیا. یعنی لیلۃ القدر میں کیا کرتے ہیں ہم؟ قیام کرتے ہیں نا، اور قیام میں کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. تو اس رمضان کی جو بیسک، اگر دیکھا جائے کہ اس رمضان کی جو تعریف کی گئی اس مہینے کی، وہ قرآن کی وجہ سے ہے. تو قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، الحمدللہ جب آپ قرآن کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اس کی تفسیر سے بھی گزر چکے ہیں، تو یقین جانیے آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ پھر اس کی تلاوت کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے بغیر ترجمے کے، اور آپ اس کی پوری تفسیر سے گزرے ہوتے ہیں، तो तिलावत सुनने और तिलावत करने दोनों में बहुत लुत्फ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अलग ही लज्जत महसूस होती है, क्योंकि कुरान दिलों की शिफा है। ये आसमान से नाजिल हुई है किताब, हमारी रूह की गिजा है ये। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हर साल रमदान में जिब्रील अमीन हर रात आते और कुरान सुनाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान उनसे पढ़ते थे, यानी दोनों एक दूसरे को सुनाते थे। क्योंकि बास कहते हैं कि कौन सुनता और कौन सुनाता था, तो बास कहते हैं कि जिब्रील अमीन पढ़ते और फिर रसूल अकरम उसको दोहराते थे ताकि और पक्का हो जाए। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु रमदान में एक रात गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो देखा कि रसूल अकरम क़यामुल लैल कर रहे हैं, आप भी उनके साथ खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रकत में सूरह बकरा, आल इमरान, निसा तीन सूरतें पढ़ी। इमेजिन करिए कि एक रकत में तीन सूरतें, वो भी सब बड़ी बड़ी सूरतें। रमजान की रात का जिक्र है ये। जब उमर रदी अल्लाह का दौरे खिलाफत का जमाना था तो उन्होंने देखा कि रमजान के महीने में सहाबा कराम अलग अलग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहकर नमाज पढ़ रहे हैं, और चूंकि सब अलग अलग पढ़ रहे थे तो सबकी तिलावत की आवाज चाहे वो हल्की ही हो बहुत ज्यादा उससे गड़मड़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक इमाम के पीछे तरावीह पढ़ा लें, जैसे कि रसूल अकरम ने रमजान की चंद रातों में पढ़ाया था। तो ये मशवरा सबको पसंद आया, आपने उबै बिन काब को उसका इंचार्ज बनाया और फिर इस तरह से तकसीम किया गया कि एक महीने में पूरा कुरान कम्प्लीट हो जाए एक इमाम के पीछे। तो इससे क्या पता चलता है कि उमर रदी अल्लाह इस बात को जानते थे कि अकेले अकेले पढ़ने से बेहतर है कि एक इमाम के पीछे पढ़ ली जाए, क्योंकि रसूल अकरम ने भी रमजान की आखिरी चंद रातों में इमामत करवाई थी क़यामुल लैल के लिए, यानी तरावीह के लिए, जिसको हम तरावीह कहते हैं एक्चुअली वो क़यामुल लैल ही है। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुद उबै बिन काब थे उनका खुद का जो मामूल था, वो खुद कुरान से उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए कहा जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उबै बिन काब को उमर रदी अल्लाह ने कुरान का इंचार्ज बनाया था। क्यों? क्योंकि वो कुरान के बारे में जानने वाले सबसे ज्यादा जानने वाले आलिम थे सहाबा में भी। तो उनके बारे में आता है कि वो रमदान की रातों में फजर तक कुरान पढ़ते रहते थे, सिर्फ सहर के लिए वो वहां से उठते थे सुभान अल्लाह, या तो वो नमाजों में क्याम करते थे कुरान पढ़ते हुए, या फिर उसके अलावा कुरान पढ़ते थे फजर तक पढ़ते थे। तो सहाबा रमदान में एक कुरान कम्प्लीट करते, यानी कुछ सहाबा का मामूल ये था कि वो एक हफ्ते में कुरान कम्प्लीट करते, इसलिए उन्होंने उसको सात मंजिलों में तकसीम कर रखा था। सात मंजिलें उन्होंने इसलिए बनाई थी कि सात दिन में कुरान कम्प्लीट हो जाए। कुछ सहाबा तीन दिन में कुरान कम्प्लीट करते थे, और उस्मान बिन अफान रदी अल्लाह के बारे में आता है कि उनको तो कुरान पर इतना उबूर हासिल था और कुरान की तिलावत से उनको बहुत दिलचस्पी थी, तो वो बाज़ औक़ात उनसे इतना कंट्रोल नहीं होता था और वो उससे जल्दी खत्म कर लिया करते थे। बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि वो एक दिन और एक रात में कुरान कम्प्लीट कर लेते थे रमदान में। अब यहाँ पर हम सहाबा का देखते हैं, क़तादा रदी अल्लाह अन्हु उनके बारे में भी आता है कि वो रमदान में एक हफ्ते में एक कुरान कम्प्लीट करते थे, और बाज़ सहाबा तीन दिन में एक कुरान कम्प्लीट करते थे। और बाज़ सहाबा के बारे में तो ये तक आता है कि वो लोग पूरी रात कुरान पढ़ते बैठे रहते थे, क्योंकि उनकी फिर चूंकि वो तो थे ही अरब लोग, फिर उसके अलावा उनको उस जुबान पर उबूर भी हासिल था, तो उनकी तिलावत इतनी फास्ट और कंटिन्यू होती थी कि वो एक दिन और एक रात में कम्प्लीट कर लिया करते थे। अब यहाँ पर हम सहाबा का देखते हैं कि सहाबा का ताल्लुक कुरान के साथ रमदान में इस तरह से हो जाता था कि वो बहुत ज्यादा तिलावत पर फोकस करते थे, क्योंकि उनको उसकी समझ आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब समझ कर यानी जब हमको समझ में आने लगता है कुरान, तो तब हम उसकी तिलावत करते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है, उसकी लज्जत ही कुछ और होती है। अब एक लम्हे के लिए थोड़ा रुके हम और गौर करें, हम अपना ताल्लुक कुरान से देखें कि हमारा ताल्लुक कुरान के साथ क्या है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो रमदान में कई कुरान खत्म करते थे, यानी वो भी एक दिन और एक रात में एक कुरान कम्प्लीट करते थे। तो रमदान कुरान का महीना है, अल्लाह ताला ने चुना है इस महीने को कुरान के नुजूल के लिए, तो हमें चाहिए कि हम भी अपने ताल्लुक को कुरान से मजबूत करें। लेकिन रमदान आता है तो हमारा क्या मामला होता है? अभी जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह आज ही किसने एक पोस्ट किया था कि रमदान की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, ये बना के रख दें, वो बना के रख दें, समोसे बना लें, स्प्रिंग रोल बना लें, प्याज तल के रख लें। इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाने का महीना है ही नहीं। जो नॉर्मल आपका रोजमर्रा का खाना था, ठीक है अफ्तार में कोई एक आध चीज आप एक्स्ट्रा बना लें रोजा है तो, लेकिन रमजान की तैयारी क्या खानों के साथ होगी, उसका इस्तकबाल आप खानों के साथ करेंगे या कुरान की आप प्लानिंग करेंगे, कुरान पढ़ने की तिलावत कुरान की, के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अभी से, आज से ही, कि मैं रोजाना कितना कुरान पढ़ूंगी, रोजाना कुरान के साथ मेरा कितना ताल्लुक रहेगा, मैं कितने घंटे कुरान के साथ गुजारूंगी, यानी अल्लाह ताला की किताब के साथ जुड़ने का ये सबसे बेहतरीन मौका है असल में। तो आप देखें कयामत के दिन दरअसल ये रोजा और कुरान सिफारिश करेंगे, कुरान कहेगा कि ए अल्लाह ताला मैंने इसे रात भर सोने से रोके रखा, ये पूरी रात मेरी तिलावत करते हुए गुजारता था, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। और रोजा सिफारिश करेगा कि अल्लाह ताला मैंने इसे दिन से लेकर रात तक की भूख और प्यास यानी खाने पीने से रोके रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। तो असल तिलावत दरअसल देखा जाए तो कयामुल लैल में है, दिन में भी पढ़ें आप कुरान वैसे भी, यानी हमारा रिलेशन कुरान के साथ रमदान में दिन और रात दोनों वक्तों में हो, खास तौर से रमदान में बहुत खास ताल्लुक हो। रमदान के अलावा भी हम उससे ताल्लुक को मजबूत रखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि रमदान खत्म हो तो हमारा ताल्लुक खत्म हो गया कुरान से, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए सहाबे कराम तो कुरान से ताल्लुक को कभी छोड़ते ही नहीं थे, वो रमदान हो या गैर रमदान बाद में भी वो कुरान की तिलावत उसी तरह करते थे। तो हम भी जो हमारा रोजमर्रा का मामूल है कुरान का, जैसे अगर आपकी आदत है कि आप रोजाना एक पारा पढ़ती हैं या हाफ पारा पढ़ती हैं या चले जितना भी पाव पारा पढ़ती हैं, तो आप रमदान में आप उसको बढ़ा लें, कम अज कम एक पारा तो जरूर मुकम्मल करें। लोग कहते हैं कि वो सल्फ थे, उनके पास वक्त था, लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त उनके पास भी इतना ही था जितना आज हमें मिला है, बल्कि उनके पास वक्त हमसे कम था देखा जाए तो, क्योंकि उनको बहुत सारे काम अपने हाथों से करने पड़ते थे। आज हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी मशीनें हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं हमारे पास, तो देखा जाए तो हमारे पास भी टाइम बहुत ज्यादा है, हम अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो। कम अज कम एक मुकम्मल कुरान का तो हम खुद से अपने आप से वादा करें कि एक कुरान मुकम्मल जरूर करेंगे, यानी अपनी पर्सनल तिलावत की बात में कर रही हूँ। देखिए कुरान सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान पढ़ना एक अलग बात है, जो अजर आपको मिलेगा वो कुरान पढ़ने पर मिलेगा। अगर आपकी इस्तेताअत ज्यादा है, आप खुद अपने बारे में महसूस कर सकते हैं कि आप कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, अगर आप अपने लिए रोज दो पारे चूज करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे रमजान में दो कुरान कम्प्लीट कर सकते हैं तिलावत के। तो अपने लिए टारगेट मुकर्रर करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी तिलावत उससे भी ज्यादा हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इतना वक्त है, जैसे जिनके पास छोटे बच्चे नहीं है, थोड़े बड़े बच्चे हैं वो समझदार होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं देना पड़ता, छोटे बच्चों के पीछे माँ को बहुत लगना पड़ता है, या आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं है और आप अकेले रह रहे हैं, या आपको काम कम है या आपके घर में काम करने वाले मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप तीन कुरान का टारगेट सेट करें अपने लिए, यानी दस 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 दिन में एक एक कुरान कम्प्लीट करेंगे, और यकीन जानिए बहुत आसानी से हो जाता है। बल्कि अगर आप टारगेट सेट करें तो आप पांच पारे एक दिन में पढ़ सकते हैं, और बहुत आसानी से हर नमाज के साथ आप चाहें तो एक कुरान, एक जुज कुरान का मुकम्मल करें, तो हर नमाज के साथ एक जुज या हर नमाज के साथ दो जुज, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर कुरान को समझें, यानी तिलावत करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तिलावत करते चले जाएं, बल्कि उसमें गौर व फिक्र भी करें, यानी तिलावत करते करते ही दरअसल देखा जाए तो तफसीर हो जाती है उसकी, क्योंकि जब आप पहले से तर्जुमा पढ़े होते हैं तो आपको सारी आयतें समझ में आने लगती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझना बहुत अच्छी बात है, कुरान का तर्जुमा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा साल पढ़े, पूरे 11 महीने आप इसको तर्जुमे से पढ़ सकते हैं, पूरे 11 महीने आप इसकी तफसीर कर सकते हैं, लेकिन ये एक महीना आप इसको खास तौर से प्राइमरली आप तिलावत के लिए फिक्स कर दें इसको। तदब्बुर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये महीना खास तिलावत का महीना है, क्योंकि कुरान दिल की बीमारियों को दूर करता है सुभान अल्लाह। फिर कुरान में अल्लाह ताला हमें बताता है कि रोजा अल्लाह ताला ने इसके फर्ज किया ताकि तुम तकवा हासिल कर सको, और तकवा की जो बातें हैं वो कुरान ही में है, कुरान ही से हमें पता चलेगा कि तकवा क्या होता है। तो रोजा और कुरान, रोजा हमारे नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता है, ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है, जिस्म की जरूरत को कंट्रोल करता है, और कुरान दिलों के रोग को दूर करता है, दिलों की जो गिजा है उसको पूरा करता है, दिलों को सैराब करता है कुरान, दिलों को नरम करता है ये कुरान, दिल की बीमारियों को दूर करता है सुभान अल्लाह। ये तिलावत कुरान आपको बहुत फायदा देगी यकीन जानिए। सुनना तरावीह में एक अलग बात है, और वो भी जायज और दुरुस्त है और बहुत अच्छी बात है। तो तरावीह में एक कुरान आप सुने या इमाम से आप कुरान सुने, हर जगह कुरान कम्प्लीट नहीं होता है, लेकिन खुद की तिलावत कयामुल लैल और दिन में तिलावत करें उसको। दिन की घड़ियों में चाहे तो आप बगैर नमाज के तिलावत कर सकते हैं, और रात की घड़ियों में आप कुरान से देख कर तिलावत कर सकते हैं, वो भी उसी तिलावत में शुमार होगा। तो सुभान अल्लाह, आप सोचे कि महीना बाबरकत है, और ये किताब किताबुन अंजलनाहु मुबारकन, ये किताब बरकत वाली किताब है, ये किताब बरकत डालती है आपकी जिंदगी में, आपके हर मामले में, वक्त में, रिस्क में, नेकियों में। तो सोचे अल्लाह ताला फरमा रहे कि किताबुन अंजलनाहु मुबारकन, की किताब हमने जो नाजिल की है वो मुबारक है, और मुबारक के मानी कोई एक मानी नहीं है, मुबारक के इतने वसी मानी है कि किसी चीज का बहुत बड़ा ढेर हो और उसे कितने भी लोग उसमें से चीजें निकालते जाए लेकिन उसका ढेर खत्म ही ना हो, वो बढ़ता ही जाए, ये बरकत है असल में। सुभान अल्लाह, अरबी जबान में एक लफ्ज के कोई एक मानी नहीं होते, इसलिए तो बहुत रिच लैंग्वेज है ये। तो अल्लाह तआला ने क्यों इस महीने को, इस किताब को मुबारक कहा है? रसूल अकरम ने इस महीने को शहर मुबारक कहा और शहरुल्लाह कहा, और कुरान हमें बताता है कि ये किताब बहुत ही मुबारक किताब है, बहुत ही बाबरकत किताब है। तो शेड्यूल बनाइए अपना, उससे आसानी होगी। रात की घड़ियों में कयामुल लैल में कुरान पढ़िए, नफिल नमाज में आप देखकर भी पढ़ सकते हैं, फिर कुरान हमारी सिफारिश करेगा कयामत के दिन। ये मग़फ़िरत का जरिया है, इससे अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। तब आप खुद डिसाइड करिए कितना कुरान में पढ़ूं, एक, दो या तीन। मेरा गोल इस रमदान में क्या है, तो अपने गोल सेट करें पहले से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। और देखिए, रसूल अकरम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, तो आप एक कुरान तो कंप्लीट करते ही थे जिब्रील अमीन के साथ। तो अहम बात यह है कि आप जो रमदान में पढ़ते हैं, क्या वो गैर रमदान से ज्यादा है? ये नॉर्मल दिनों में जो पढ़ते थे वो रमदान में ज्यादा है, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, यानी आप आम दिनों में जितनी तिलावत करते थे रमदान में उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। देखिए, जिब्रील अमीन ने आखिरी साल जब रसूल अकरम की वफात हुई उससे पहले दो बार दौर किया कुरान का। तो सल्फ से पता चलता है ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान से करीब हों। अल्लाह ताला ने कुरान हमारे लिए नाजिल किया, इंजॉय करते हुए पढ़ें इसको। आप सोचें, महसूस करते जाएं कि सुभान अल्लाह, ये वही महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ, ये वही महीना था जब गारे हिरा में रसूल अकरम को वही मिली थी, ये वही महीना है जिसमें रसूल अकरम हर साल रमदान में जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर किया करते थे। उसी महीने में आप दाखिल हो रहे हैं जिसमें जिब्रील अमीन उतरते थे रोजाना, रोजाना रसूल अकरम को कुरान सुनाते थे और खुद सुनते भी थे उनसे कुरान। तो आप क्या समझते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये बात कही कि तुम कितने दिन में कुरान कंप्लीट करो? कहा है कभी ऐसा? जी हाँ, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, जो मैंने पहले ही आपको हदीस सुनाई, उनसे कहा था आपने कि ए अब्दुल्ला, तुम हर महीने में कुरान पढ़ा करो। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये तो बहुत कम है, मैं उससे ज्यादा की ताकत रखता हूँ। तो तब आपने थोड़ा सा उसको बढ़ाया कि ठीक है, इतना इतना पढ़ लिया करो, इतना पढ़ लिया करो। लेकिन अब्दुल्ला बिन अम्र मानते ही नहीं थे और कहते जाते थे कि या रसूलुल्लाह, नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा की ताकत रखता हूँ, ये तो बहुत कम है। सुभान अल्लाह, आप देखिए कि उनको तिलावत से रोका जा रहा है और वो कहते कि नहीं, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। सुभान अल्लाह, कैसे सहाबत है। फिर आखिर में रसूल अकरम ने कहा कि ठीक है, अब तीन दिन से कम में खत्म ना करना, तीन दिन की तुमको इजाजत है कि हर तीन दिन में कुरान मुकम्मल किया करो, लेकिन उससे कम ना करना। सुभान अल्लाह, आप सोचे, इससे पता चलता है कि यहाँ रसूल अकरम ने जो एक महीने की बात की थी कि तुम ए अब्दुल्ला, एक महीने में कुरान कम्प्लीट किया करो, तो इसी बिना पर फिर सहाबा ने उसको तरावीह में पूरे एक महीने के लिए उसको डिवाइड किया। सहाबा ने तो नहीं किया था असल में, ये तो बाद में डिवीजन हुआ एक एक जुज का, लेकिन सहाबा के जमाने में एक महीने में कुरान तरावीह में कंप्लीट किया जाता था। लेकिन सहाबा ने खुद कुरान की जो तकसीम की थी, उनको एक महीने के लिए नहीं चाहिए था, उनको एक हफ्ते के लिए चाहिए था, तो उन्होंने सात मंजिलों में इसको तकसीम किया था। और सहाबा कहा करते थे, इकराउल कुरान, कुरान पढ़ा करो हर सात दिन में, यानी सात दिन में मुकम्मल करो। कई किताबों में ये बात हमें मिलती है सहाबा की, कि उनसे पूछा गया कि आप कितने दिन में कुरान पढ़ते हैं, तो अक्सर सहाबा का जवाब था कि सात दिन में। सुभान अल्लाह, तब देखें कि अगर आप रमदान के चार हफ्ते हैं, तो अगर आप सात दिन में कुरान कंप्लीट करते हैं, तो कितने कुरान हो जाएंगे आपके फिर? चार। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। इब्ने अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि वो हर जुमा के जुमा एक तिलावत कुरान की मुकम्मल करते थे, एक कुरान की तिलावत मुकम्मल करते थे, जुमा को शुरू करते थे फिर वो जुमा को खत्म हो जाता था, माशाल्लाह, कुव्वत अल्लाह बिल्लाह। कतादा रदी अल्लाह के बारे में थे, वो भी एक वीक में, वंस अ वीक वो कुरान मुकम्मल किया करते थे। तो ये तो उनका आम दिनों का मामूल था। बाद सहाबा तो रमदान में तीन दिन में कुरान मुकम्मल किया करते थे। तो जब सहाबा से पूछा गया तो कहते थे कि जब रमदान आता है तो फिर हम बाकी सारी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, सिर्फ हम तिलावत पर फोकस करते हैं और हम अपनी तिलावत को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उस्मान रदी अल्लाह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक दिन और एक रात में, और ये भी आता है कि सहाबा अपने आप को कुरान के साथ इतना बिजी कर देते थे कि किसी और तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। दिन और रात वो कुरान के साथ गुजारते थे। तो पूरी सोसाइटी का कल्चर ही ये बन गया था असल में, सुभान अल्लाह। यानी हर तरफ कुरान ही से ताल्लुक मजबूत होता था उस जमाने में। कयाम लैल में कुरान, दिन में कुरान, हर 3 दिन में कुरान वो पढ़ते थे। और आपको मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली आखिरी अशरे में आपका क्या हाल होता था। आप तूफान की मानिंद, तेज हवाओं की मानिंद हो जाते थे सखावत में। तो पहले 20 दिन गुजर गए, चले जैसे गुजरे ठीक है, एक एक पारे के साथ गुजरे, लेकिन आखिरी 10 दिन तो बहुत ज्यादा आप अपने आप को बढ़ा दीजिए। आखिरी 10 दिन में चूंकि शबे कद्र है और फिर रमदान जाने वाला होता है, हमसे जुदा होने वाला होता है, उसको अलविदा कहना होता है रमदान को। तो ऐसा समझे कि वो 10 दिन जो आखिरी आपके बचे हैं, तो उसको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ कर लीजिए कि अरे अल्लाह, ये रमदान मेरे हाथ से चला जा रहा है, अब मैं इसको कैसे ये 10 दिनों में जो मैं 20 दिन में मैं कमी कर चुकी हूँ, इन बचे हुए 10 दिनों में मैं उसको हासिल कर लूँ या पूरा कर लूँ। तो अपने आप को असाइन करें, एक गोल बनाए कुरान के साथ। इस रमदान में आप कितना रिसाइट करेंगे, कितनी तिलावत करेंगे। इमाम सौरी कहते हैं कि हर एक की इतनी इस्तेताअत नहीं होती है, हम खुद अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं, खुद अपने मामला जो भी हमारे साथ रोजाना पेश आते हैं उसके लिहाज से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये काम करने हैं, लिहाजा हम कुरान कितना पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि सुभान अल्लाह, अभी हमारे पास टाइम है, बाद में पता नहीं अगले रमदान में हमें कैसी मसरूफियत होती है, ये हम कहाँ होते हैं। तो लिहाजा अभी इस मौके को गनीमत जानिए। तो सेल्फ सालेहीन कुरान के साथ इंगेज हो जाते थे। अब देखिए जब हम बहुत पढ़ते हैं कुरान तो हम उसके साथ यूज टू हो जाते हैं। तो बस ये कुरान दरअसल हमारे हक में गवाही देगा कि ए अल्लाह ताला इसको बख्श दिया जाए, ये सूरतें हमारे ऊपर साया करेंगी, कुरान की दोनों सूरतें सूरह बकरा और आले इमरान। हाँ, लेकिन जो लोग कुरान से दूरी अख्तियार करते हैं तो उनके खिलाफ फिर कुरान गवाही देगा, उनके खिलाफ ये कुरान हुज्जत बनेगा। सूरह फुरकान में क्या पढ़ते हैं हम कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला के सामने शिकायत करेंगे कि अल्लाह ताला मेरी कौम ने इस कुरान को भुला दिया था, पीछे डाल दिया था, पीठ के पीछे डाल दिया था, छोड़ दिया था। महजूरा का लफ्ज आता है। तो आप खुद अपने आप के बारे में सोचें कि ये कुरान आपके हक में गवाही देने वाला बनेगा या अल्लाह ना करे कि आपके खिलाफ हुज्जत बने। क्योंकि अल कुरान हुज्जत अलक औ अलैक, या तो कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अब हमें खुद डिसाइड करना है। तो देखिए रमदान का जो गोल है हमारा, अल्लाह ताला का तकवा हमको हासिल करना है, हमें कॉन्शियस होना है, हमें अलर्ट होना है, जहन और दिल दोनों को हम अलर्ट करें, तकवा हासिल करें, तिलावत करें खूबसूरती के साथ। जब रमदान आए तो अपने नफ्स को कुरान के साथ बांध लीजिए जैसे कि सहाबा करते थे। और गैर रमदान में आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, मानी के साथ समझकर पढ़ सकते हैं, हिफ्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी रमदान में तिलावत पर आप फोकस करें, दिन और रात का आपका साथ हो। फिर पढ़ते पढ़ते जिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा आता है तो वो गौर व फिक्र भी करें गहराई के साथ, अमली पॉइंट भी ढूंढे कि आपको क्या उसमें से अमली पॉइंट मिल रहे हैं। क्योंकि कुरान आपके किरदार पर असरअंदाज होना चाहिए, आपके किरदार में तब्दीली आनी चाहिए। कुरान के अहकाम को कबूल करें और उसके मनाहियात से रुकें, उसके अजायबात से सीखें, गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। हर सूरत के आखिर में, हर आयत के अख्तिताम पर, हर पेज के आखिर में कितना कुरान आपके अंदर आया। क्योंकि हदीस से पता चलता है कि आखिर वक्त में ऐसे लोग आएंगे जो तिलावत तो बहुत खुशहानी के साथ करेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अल्लाह ताला महफूज रखे, बहुत डर लगता है ये वाली बात पढ़कर। तो ये हलक से नीचे नहीं पहुंचेगा कि क्या मतलब है, मतलब कुरान पर वो अमल नहीं कर रहे होंगे। तजवीद तो बहुत अच्छी जानते होंगे, तिलावत बहुत खूबसूरत करते होंगे, उसके सारे कायदों से भी वाकिफ होंगे, लेकिन कुरान पर अमल नहीं करने वाले होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ तिलावत तिलावत पर फोकस करें और अमल ना करें। क्योंकि कुरान पढ़ने का लाजमन असर इंसान की अपनी जात पर होता है, क्योंकि कुरान इंसान को बदल कर रख देता है। आप खुद देख लीजिए कि पूरा अरब मुआशरा कुरान के नुजूल से पहले कैसा था और कुरान के नुजूल के बाद सिर्फ चंद सालों में कैसे तब्दीली आ गई है ना। तो कुरान क्या करता है असल में, ये पूरे इंसानों को, पूरे मुआशरे को, पूरे माहौल को चेंज कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुरान सबको चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपके अंदर, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई तो मतलब हमने कुरान को हलक से नीचे ही नहीं उतारा। क्योंकि ये तो मा हुआ शिफाउ लिल मोमिनीन, ये शिफा है मोमिनीन के लिए। वह नुनज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, जो इसको कबूल करता है, जो इस पर अमल करता है, तो उसके लिए ये शिफा है, रहमत है। ابن القیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سننے کے بعد بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن سن کر بالکل فرار اختیار کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دور بھاگتے ہیں اس سے قرآن سے. دوسرے وہ لوگ ہیں جیسے بنی اسرائیل تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی کتاب یا علم کی بات کی جاتی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا, اور اس کی مثال گدھے کی سی دی گئی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں. اور تیسرے ہیں جو اس کو گائیڈنس کے لیے پڑھتے ہیں, جو تھرسٹی ہوتے ہیں, جو پیاسے ہوتے ہیں ہدایت کے لیے. تو انہیں کے لیے پھر یہ قرآن ہدایت ہے, شفا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یؤمنون بہ. تو وہ لوگ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں, وہی دراصل ڈیزرو کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ حق کی تلاوت کیا ہے, کہ قرآن کے حلال کو حلال جانا جائے, حرام کو حرام سمجھا جائے, ایسی تلاوت کرے جیسے اللہ نے ابھی نازل کیا ہے, اس میں کچھ چینج نہ کرے اور اس کی غلط تعویل نہ کرے, اور اس کو گا گا کر نہ پڑھا جائے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ, یہ قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو ہم جوڑیں, اس کے حلال کو حلال جانیں, اس کے حرام کو حرام سمجھیں, اور اس کو گا گا کر نہ پڑھا جائے, بلکہ تلاوت ہو لیکن خوش الحانی کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کریں, اس میں غور و فکر کریں, اس کے حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام سمجھے, یعنی جو حق کی تلاوت ہے اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ ہمارا بھی صحابہ کے جیسا معاملہ ہو جائے, کہ کچھ تو معاملات میں ہم صحابہ کے جیسا عمل کرنے والے بنیں, کہ ہم بھی تلاوت قرآن پر بہت فوکس کریں, کہ تین دن میں کم از کم ایک قرآن کمپلیٹ کریں, اگر تین دن میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم پانچ دن میں کمپلیٹ کریں, پانچ میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم سات دن میں کمپلیٹ کریں, اور سات میں بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دس دن میں ایک قرآن کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. اور چلے ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی, تو کم از کم پورے رمضان میں ایک قرآن مکمل تو تلاوت کریں ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.